लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर कलीसिया में लोकधर्मी विश्वासियों के मिशन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि बपतिस्मा संस्कार से पोषित होकर लोकधर्मी विश्वासी, विशेष रूप से महिलाएं, कलीसिया के अंतर्गत जिम्मेदारी के क्षेत्र में अधिकाधिक भाग ले सकें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं, बुधवार ये आमदर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस के धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आमदर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में जमा हुए विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
cari fratelli e sorelle, buongiorno. Completiamo oggi la catechesi sulla preghiera dei salmi. Anzitutto notiamo che nei salmi compare spesso una figura negativa.
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात। आज की धर्म शिक्षा माला में हम स्तोत्र की प्रार्थना पर चिंतन करेंगे। स्तोत्र में हम एक नकारात्मक व्यक्तित्व को पाते हैं, जिससे हम दुष्ट व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं, जो अपने जीवन को इस भांति जीता है मानो ईश्वर है ही नहीं। हम उस व्यक्ति के किसी परलौकिक संदर्भ को नहीं पाते जिसमें असीमित अहंकार है, जिसे अपने कार्यों और विचारों के न्याय का कोई भय नहीं। यही कारण है कि स्तोत्र लेखक प्रार्थना को जीवन की एक मूलभूत सच्चाई स्वरूप व्यक्त करते हैं। उस दिव्य और अलौकिक व्यक्तित्व को आध्यात्मिक गुरु ईश्वर का पवित्र भय निरूपित करते हैं, जो हमें पूर्ण मानव बनाता है, क्योंकि यह एक सीमांत की भांति हमें अपने जीवन को अंधाधुंध एक हिंसक मानव की तरह जीने से रोकता है। प्रार्थना में हम मानव जाति की मुक्ति को पाते हैं। संत पापा ने कहा,
Esiste anche una preghiera fasulla, una preghiera fatta solo per essere ammirati dagli altri.
वहीं एक झूठी प्रार्थना भी है, एक प्रार्थना जो दूसरों से प्रशंसा की खोज करती है। कुछ लोग अपने को ख्रिस्तीय दिखलाने या उन्होंने क्या नया खरीदा है उसकी नुमाइश हेतु गिरजा जाते हैं, जो एक झूठी प्रार्थना है। यीशु इस तरह की प्रार्थना का घोर तिरस्कार करते हैं। सच्ची प्रार्थना अपनी निष्ठा में हृदय की गहराई में उतरता, जहां हम सच्चाई को ईश्वर की निगाहों से देखते हैं। जब कोई प्रार्थना करता है तो वह अपने जीवन की सभी चीजों को गहराई से देखता है। इसमें एक उत्सुकता होती है जो छोटी चीज से शुरू होते हुए अपनी गहराई में जाती है, मानो ईश्वर ने उस छोटी चीज को अपने हाथों में उठाकर उसे बदल दिया हो। हमारे लिए सबसे खराब आदतन रूप तोते की तरह प्रार्थना करना है, जो नहीं होना चाहिए। हमें हृदय से प्रार्थना करने की जरूरत है, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन का केंद्र बिंदु है। संत पापा ने कहा कि यदि हमारी प्रार्थना ऐसी होती तो हमारे भाई बहन और हमारे शत्रु भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्राचीन मठवासी ख्रिस्तियों की एक कहावत है,
Beato il monaco che dopo Dio considera tutti gli uomini come Dio.
धन्य है वह मठवासी जो ईश्वर के बाद सभी मनुष्यों को ईश्वर के प्रतिरूप में देखता है। जो ईश्वर की आराधना करते हैं वे उनकी संतानों को प्रेम करते हैं। वे जो ईश्वर का सम्मान करते मानव जाति का सम्मान करते हैं। अतः प्रार्थना चिंता निवारक कोई साधन नहीं है, और न ही ऐसी प्रार्थना सही अर्थ में ख्रिस्तीय प्रार्थना है। प्रार्थना अपितु हम में से हर एक को उत्तरदायी व्यक्ति बनाती है। इसे हम हे पिता हमारे की प्रार्थना में पाते हैं, जिसे यीशु ने अपने शिष्यों को सिखलाया।
Il salterio è una grande scuola.
भजन माला एक विद्यालय की भांति है, जो हमें प्रार्थना करने की शिक्षा देती है। स्तोत्र सदैव परिशुद्ध और कोमल भाषा का उपयोग नहीं करते, वे हमारे लिए जीवन की निशानियों को बहुधा व्यक्त करते हैं। इसके बावजूद उन सारी व्यक्तिगत और हृदय के आंतरिक गहराई से निकली प्रार्थनाओं का उपयोग पहले यरूशलेम के मंदिरों और उसके बाद यहूदियों के प्रार्थना गृहों में होता था। कैथोलिक कलीसिया की धर्म शिक्षा इसके बारे में कहती है,
L'espressione multiforme della preghiera dei salmi nascono ad un tempo nella liturgia del tempio e nel cuore dell'uomo।
स्तोत्र की प्रार्थना का स्वरूप मंदिर और मानव हृदय दोनों में तैयार होते हैं। इस भांति व्यक्तिगत प्रार्थनाएं इसराइलियों के जीवन से उत्पन्न होते हुए पोषित होते और कलीसिया की प्रार्थना का स्वरूप बनते हैं। स्तोत्र में एक वचन व्यक्ति के व्यक्तिगत अंतरंग विचारों और समस्याओं का हल प्रस्तुत करता है, जो एक सामूहिक विरासत है जिसका उपयोग हर कोई और हर किसी के लिए प्रार्थना हेतु किया जाता है। ख्रिस्तीय प्रार्थना में ऐसी सांस और आध्यात्मिक तनाव का सम्मिश्रण है जो मंदिर और विश्व को एक साथ पकड़कर रख सकती है। प्रार्थना गिरजाघरों के गुंबदों से शुरू होते हुए शहर के गलियों में इति हो सकती है और इसके विपरीत यह दिनचर्या कार्यों की चिंताओं में पुलकित होते हुए धर्मविधि की परिपूर्णता में पाई जाती है। कलीसिया के द्वार अवरोधक नहीं लेकिन भेद्य झिल्लियां हैं जहां हर एक की गुहार का स्वागत किया जाता है। स्तोत्र प्रार्थना में हम दुनिया की उपस्थिति को सदैव पाते हैं। उदाहरण स्वरूप स्तोत्रों में हम अति कमजोर लोगों की मुक्ति हेतु दिव्य याचना की प्रतिज्ञा पाते हैं, क्योंकि गरीब सताए जाते हैं और दरिद्र आह भरते हैं। प्रभु कहता है, मैं अब उठूंगा, मैं उनका उद्धार करूंगा। स्तोत्र मनुष्य को दुनियादारी से सचेत कराते हैं। मनुष्य अपने वैभव में यह नहीं समझता, वह पशुओं की भांति है जिसका विनाश होता है। स्तोत्रों में हम ईश्वरीय क्षितिज को खुलता सुनते हैं। प्रभु राष्ट्रों की योजना व्यर्थ करता है और उनके उद्देश्य पूरे नहीं होने देता है, किंतु उसकी अपनी योजनाएं चिरस्थायी हैं। उसके अपने उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। संत पापा ने कहा,
Dove c'è Dio, ci deve essere anche l'uomo।
जहां ईश्वर है वहां मानव का होना जरूरी है। पवित्र धर्म ग्रंथ अपने में सुस्पष्ट है, हम प्रेम करते हैं क्योंकि उन्होंने हमें पहले प्रेम किया है। यदि कोई कहता है, मैं ईश्वर को प्रेम करता हूँ और वह अपने भाई से घृणा करता है, तो वह झूठा है, क्योंकि यदि वह अपने भाई को जिसे वह देखता है प्रेम नहीं करता, तो ईश्वर को जिसे वह नहीं देखता है कैसे प्रेम कर सकता है। उन्होंने कहा कि आप दिन में कई बार रोजरी करते हैं लेकिन दूसरों की निंदा शिकायत करते, दूसरों से घृणा के भाव रखते, तो यह सत्य नहीं वरन दिखावा है। धर्म ग्रंथ हमें एक व्यक्ति के हाल से रूबरू कराता है जो निष्ठा में ईश्वर की खोज करता लेकिन उसका साक्षात्कार ईश्वर से नहीं होता है। लेकिन हमारे लिए यह भी सुस्पष्ट किया जाता है कि गरीबों के आंसुओं को हम कभी अनदेखा ना करें। ईश्वर उस अविश्वास को बढ़ावा नहीं देते जो मानव में दिव्य उपस्थिति को नकारता हो। मेरा ईश्वर में विश्वास है लेकिन मैं दूसरों से दूरी बनाए रखता, उनसे घृणा करता हूँ, तो यह स्थापित अविश्वास है। मानव को ईश्वर के प्रतिरूप में नहीं पहचानना एक अपवित्रीकरण, एक घृणा है। यह अपने में एक बड़ी बुराई है। संत पापा ने इस बात के साथ अपने धर्म शिक्षा माला का समापन किया।
La preghiera dei salmi ci aiuti a non cadere nella tentazione della impietà, cioè di vivere e forse anche di pregare come se Dio non esistesse।
स्तोत्र के माध्यम प्रार्थना करना हमें दुष्टों की तरह प्रार्थना करने से बचाए, अर्थात हम अपने जीवन को इस तरह ना जिए मानो ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं और ना ही गरीबों का अस्तित्व है। इतना कहने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने अपनी धर्म शिक्षा माला समाप्त की और सभों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ करते हुए सभों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
Domino hobiscum.
Et con spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunque usque in saeculum.
Benedictorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
बदले करो भलाई प्रेम ने यही रीत चलाई
बुराई के बदले करो भलाई प्रेम ने यही रीत चलाई
सुखी रहे सारा संसार जग में रही पहचान है
प्रेम करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है प्रेम करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है
प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है
करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है
प्रेम रखे जो इस दुनिया में ईश्वर की संतान है
प्रेम करो प्रेम रखो ईश्वर प्रेम से आया है
हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं लीजिए प्रस्तुत है समाचार रोम के आराचेली स्थित संत मरिया महागिरजा घर में शांति हेतु 34वीं अंतरधार्मिक शांति प्रार्थना सभा का आयोजन रोम के संत इजिदियो समुदाय द्वारा किया गया असीसी के मनोभाव में 20 अक्टूबर को आयोजित इस प्रार्थना की विषय वस्तु थी कोई भी अकेला बच नहीं सकता शांति और भाईचारा संत पापा फ्रांसिस और विश्व के प्रमुख धर्मों के नेताओं ने शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रार्थना सभा में कोई भी अकेला बच नहीं सकता शांति और बंधुत्व पर हस्ताक्षर करके शांति की अपील की शांति की अपील 2020 इस प्रकार है असीसी की भावना में रोम में एकत्रित आध्यात्मिक रूप से दुनिया भर के विश्वासियों और सभी पुरुषों एवं महिलाओं के साथ मिलकर हमने एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है कि हम दुनिया को शांति का उपहार दे सकें हमने मानवता के घावों पर ध्यान रखने का आह्वान किया है हम अपने कई पीड़ित भाइयों और बहनों की मूक प्रार्थनाओं के साथ एकजुट हैं हम पूरी तरह से अपने आप को देशों और दुनिया के नागरिकों को इस शांति के लिए अपील का प्रस्ताव करने हेतु प्रतिबद्ध हैं आज हम अनिश्चितताओं में जैसा कि हम कोविड-19 महामारी के प्रभावों को महसूस करते हैं जो असमानताओं और भय को बढ़ाकर शांति को खतरे में डालती है हम दृढ़ता से कहते हैं कि कोई भी अकेले अपने आप को बचा नहीं सकता कोई भी नहीं युद्ध और शांति महामारी और स्वास्थ्य देखभाल भूख और भोजन तक पहुंच, वैश्विक तापमान और सतत विकास आबादी का विस्थापन परमाणु खतरों का उन्मूलन और असमानताओं में कमी ये ऐसे मामले हैं जो व्यक्तिगत राष्ट्रों के लिए नहीं है ऐसी दुनिया जो आपस में जुड़ी हुई है इसे हम अब बेहतर तरीके से समझते हैं फिर भी अक्सर भ्रातृत्व की भावना का अभाव है हम सब भाई बहने हैं आइए हम सब शक्तिमान से प्रार्थना करें कि इस परीक्षण के समय के बाद अब हम अन्य बनकर ना रहें बल्कि विविधता में समृद्ध हम बने यह समय साहस पूर्वक सपने देखने का समय है शांति संभव है युद्ध के बिना एक दुनिया काल्पनिक नहीं है यही कारण है कि हम एक बार फिर कहना चाहते हैं अब और कोई युद्ध नहीं संवाद युद्ध के लिए तर्कों को विघटित करता है युद्ध भाईचारे को नष्ट करता है कोई भी यह महसूस न करे कि इसे छूट मिली है हम सभी की साझा जिम्मेदारी है हम सभी को क्षमा मांगने और क्षमा देने की आवश्यकता है दुनिया और इतिहास के अन्याय घृणा और प्रतिशोध से नहीं बल्कि संवाद और क्षमा द्वारा ठीक होते हैं। ईश्वर हमें इन आदर्शों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और उस यात्रा की प्रेरणा दें जो हम एक साथ कर रहे हैं। वे हर दिल को छू लें और हमें शांति का अग्रदूत बनाएं। रोम, कंपिदोलियो पहाड़ी, 20 अक्टूबर 2020। इसी के मद्देनजर संत पापा फ्रांसिस ने 4 ट्वीट किया जो इस प्रकार है। हमारी वर्तमान सभा धार्मिक नेताओं और सभी विश्वासियों को शांति के लिए प्रार्थना करने हेतु एक प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करती है, युद्ध के लिए नहीं लेकिन संघर्षों को समाप्त करने के लिए विश्वास की कोमल ताकत के साथ काम कर रहे हैं। दूसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, अपने आप को बचाने के लिए सुसमाचार मुक्ति का सुसमाचार नहीं है। यह शंका युक्त सुसमाचार का सबसे बड़ा मिथक है जो दूसरों को क्रूस ढुलाता है, जबकि सच्चा सुसमाचार हमें दूसरों का क्रूस ढोने को कहता है। तीसरे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, दुख भोग के पहले यीशु के शिष्यों ने 2 तलवार को दिखाया तो यीशु ने कहा बस। यीशु का यह एक शब्द बस सदियों से गूंजता रहा है और हमारे अपने समय में भी बलपूर्वक पहुंच गया है। तलवार, हथियार, हिंसा और युद्ध, बस। चौथे ट्वीट में संत पापा ने लिखा, सभी विश्वासियों और भली इच्छा वाले पुरुषों और महिलाओं से हम कहते हैं, आइए हम शांति के रचनात्मक कारीगर बनें, हम सामाजिक मित्रता का निर्माण करें, हम संवाद को अपनी संस्कृति बनाएं। साथ ही बुधवार को संत पापा फ्रांसिस ने संत पापा पॉल छठे सभागार में बुधवारीय आमदर्शन समारोह के दौरान प्रार्थना पर धर्म शिक्षा दी। इसी के मद्देनजर संत पापा ने एक ट्वीट किया। संदेश में उन्होंने लिखा, प्रार्थना जीवन का केंद्र है, जो प्रार्थना करता है उसके लिए भाई बहन भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जो लोग ईश्वर को मानते हैं वे ईश्वर के बच्चों को भी प्यार करते हैं। जो लोग ईश्वर का सम्मान करते हैं वे मनुष्यों का भी सम्मान करते हैं। उधर संयुक्त राज्य मानव अधिकार उच्चायुक्त मिशेल बैसलेट ने मंगलवार को जारी एक वक्तव्य में भारत में खासतौर से मानव अधिकारों के खातिर काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों के लिए स्थान सीमित किए जाने पर अफसोस जताया। स्थान सीमित करने के इन प्रयासों में ऐसे उलझे हुए और अस्पष्ट शब्दों से भरे कानून भी शामिल हैं, जो गैर सरकारी संगठनों की गतिविधियों और विदेशी चंदे के रास्ते में बाधाएं खड़ी करते हैं। उच्चायुक्त ने कहा, भारत में सिविल सोसाइटी बहुत मजबूत रही है, जो देश में और वैश्विक स्तर पर भी मानव अधिकारों की रक्षा के लिए असाधारण रूप से अग्रिम मोर्चा पर रही है, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ कि इन आवाजों को दबाने के लिए उलझे हुए और अस्पष्ट शब्दों वाले कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस अधिनियम में ऐसे किसी भी गतिविधि के लिए विदेशी चंदा स्वीकार करने पर पाबंदी लगाई गई है जो जनहित के लिए हानिकारक हो। उन्होंने कहा, पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार बहुत ही ज्यादा आक्रामक उपायों को न्यायसंगत ठहराने के लिए FCRA का सहारा लिया है। मैं भारत के राष्ट्रीय संस्थानों से ऐसी सामाजिक व कानूनी सुरक्षाओं को मजबूत करने के लिए अनुरोध करती हूँ जिनके तहत सिविल सोसाइटी स्वतंत्र होकर काम कर सके और प्रगति में अपना योगदान दे सके। हाल के समय में 83 वर्षीय एक कैथोलिक पुरोहित स्टैन स्वामी पर आरोप लगाए गए हैं और उनके खराब स्वास्थ्य के बावजूद उन्हें बंदी बनाकर रखा गया है। फादर स्टैन स्वामी हाशिए पर धकेले गए लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए काम करते रहे हैं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।